الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، مش لتند نوسي ذكر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس بات کو باور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں ہے. چنانچہ ذکر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ذکر کرنے والے کو اللہ رب العزت گناہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، کہ مثال ذکر کرنے والے کی زندہ کی ہے اور ذکر نہیں کرنے والے کی مردہ کی ہے. اور اس سے مراد ظاہری موت نہیں ہے کہ جو ذکر نہیں کر رہا ہے اس کو موت آ جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد باطنی موت ہے کہ جو ذکر نہیں کرے گا وہ آسانی سے گناہ کر لے گا، اور جو ذکر کرتا ہے وہ باطنی طور پہ زندہ ہے، گناہ آسانی سے نہیں کرے گا. تو ذکر کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ کہ انسان اس کی برکت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. ذکر کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ ذکر کرنے والا ہمیشہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے. یہ بھی باور کیا گیا کہ اس دنیا کا سسٹم ایسا اللہ نے بنا دیا ہے کہ ہر شخص کو مشکل پریشانیوں سے گزرنا ہے. امیر ہوگا تو بھی مشکلات کا سامنا کرے گا، غریب ہوگا تو بھی مشکلات کا سامنا کرے گا، مشرق میں بیٹھا ہوا ہے تو بھی مشکلات کا سامنا، اور مغرب میں بیٹھا ہے تو بھی مشکلات کا سامنا، مسلمان ہے تو بھی اسے چیلنجز ہیں، کافر ہے تو بھی اسے چیلنجز ہیں. تو ہر بندے نے مشکلوں کو جھیلنا ہے، اور ذکر کرنے والا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مشکلوں میں پھر بھی پرسکون رہے گا. کل کی مجلس میں ہم نے ذکر کی یہ فضیلت بیان کی کہ ذکر کرنے والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے. جتنا ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیطان ہماری زندگی میں انوالوڈ ہے، شیطان اس سے بھی زیادہ انوالوڈ ہے. حدیث پاک کے الفاظ کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان موجود ہے، تو لمحہ بہ لمحہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوششیں کرتا ہے. نیکی سے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، مختلف حربے اختیار کرتا ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے، بڑا زوردار بڑا دشمن ہے. اتنا بڑا تو دشمن ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن جیسی تلاوت کی عظیم و شان عبادت ہے. قرآن کی تلاوت جیسی عظیم و شان عبادت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے تم قرآن میں پڑھنے سے پہلے بھی شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگ. تو جو ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے حربوں سے بچ جاتا ہے. اللہ کی عبادت میں مشغول اللہ نے اعلان کر دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو عبادت گزار میرے بندے ہوں گے ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلے. آج کی اس مجلس میں ذکر کی ایک اور فضیلت بیان کرنا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ ذکر کرنے والا ہی محبت الہی کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے. वैसे भी ये दुनिया भी उसूल भी मोहब्बत का यही है कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसको याद ही करता है। माँ को बेटे से मोहब्बत होती है, उस बेटे को याद करवाने के लिए उस माँ को कोई कुछ करना नहीं पड़ता है, उसकी याद में वो बेटा शामिल होता है। इस माँ का बेटा घर से पढ़ने के लिए या काम कारोबार के लिए किसी वजह से भी चले जाता है, वो पूरा दिन काम भी कर रही होती है, पूरा दिन और भी चीजें कर रही होती है, मगर उसके दिल में वो बेटा ही होता है, लम्हा ब लम्हा वो बेटा उसके दिल में होता है। इसकी मिसाल हमने देखी है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर पे जाना हुआ, उनके बेटे की तलाक हो गई। एक पोता था, उस पोते से बड़ी मोहब्बत उन साहब थी, तो जाहिरन तो ये मोहब्बत नजर नहीं आती है, किसी को भी नजर नहीं आती। तो बेटे की जो तलाक हुई, तो जो बेटे की बीवी थी वो उस पोते को लेके अपने वालदेन के घर चली गई, और उस पोते का दादा जो है वो, हमें तो नहीं पता था किस लेवल की मोहब्बत है, हमें क्या पता, मगर मोहब्बत थी। तो एक दिन बैठे हुए बात कर रहे थे और वो पोता अचानक से घर में आ गया, और वो खुद मशवरा कर रहे थे किसी अहम बात में, और भी लोग बैठे हुए थे जिनसे गुफ्तगू चल रही थी, पूरा जैसे खानदान मिलता है। कहीं से खबर आई कि बेटा आया हुआ है और कहीं बैठा हुआ है, न किसी से इजाजत ली न किसी से बात की, वो बातचीत के बीच में बात करते करते उठ गया और आउट कि वो आ गया है। तो पता चला कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी याद में, उसकी याददाश्त में वो होता ही रहता है। इसी तरह जो अल्लाह को याद करता है उसके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, कि अल्लाह की याद जो है ये दिलों की शिफा है, कि दिल से हर गैर की मोहब्बत निकल जाती। जब इश्क से तेरे भर गए हम, जब इश्क से तेरे भर गए हम, तू ही रहा जिधर गए हम। तो जब मोहब्बत हो जाती है तो हर वक्त महबूब ही याद रहता है। किताबों में वाक्य लिखा है, एक बादशाह की बेटी को मोहब्बत हो गई महल में काम करने वाले एक फकीर नौजवान से। तो महल का एक खादिम, महल का एक मुलाजिम था, शहजादी को मोहब्बत उस मुलाजिम से। अब क्योंकि बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी, मुलाकात उससे करना बड़ा मुश्किल मामला था, कि अजीब बातें शुरू हो जाएंगी कि शहजादी जो है वो किसी मुलाजिम से ऐसे चुपके मुलाकात कर रही हो। बड़े महीनों की काविशों के बाद, बड़ी कोशिशें करने के बाद एक ऐसा मौका आया कि किसी को पता न चले, और शहजादी की मुलाकात इस महल में काम करने वाले फकीर नौजवान से हो गई। उस मुलाकात में शहजादी ने उसको बताया कि मुझे आपसे मोहब्बत है। उस नौजवान ने भी यही कहा कि मुझे भी आपसे मोहब्बत। ये बात करने के बाद उस नौजवान ने देखा कि शहजादी की आंखों में आंसू, तो पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? उसने कहा इसलिए रो रही हूं कि आज ये जो हमारी पहली मुलाकात है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। और नौजवान भी परेशान हो गया कि भाई आखिरी मुलाकात क्यों? उसने कहा इसलिए आखिरी मुलाकात कि मैं बादशाह की बेटी और आप तो महल में काम करने वाले फकीर नौजवान, आपके मेरी मुलाकात को बार बार थोड़ी हो सकती है। ये बात सुन के वो जो मुलाजिम था, फकीर नौजवान था, उसको भी बड़ा गम हुआ। तो दोनों गम में बैठे हुए थे। इतने में वो शहजादी कहती है कि एक तरीका है कि तेरी मेरी मुलाकात बार बार हो सकती है, और वो ये है कि जो मेरा वालिद है ना बादशाह, ये नेक आदमी है, अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत रखता है। तो अगर तू किसी तरह से अल्लाह वाला बन जा तो फिर तो मैं अपने वालिद से इजाजत लेके तुझसे मिलने के लिए आ सकती हूँ कि जी मैं दुआ करवाने जा रही हूँ। अच्छा, ये अल्लाह वाले कैसे बनते हैं? शहजादी ने कहा कि वैसे मुझे इतना कोई नहीं पता कि अल्लाह वाले बनते कैसे हैं, मगर मुझे ये पता कि अल्लाह वाले सारा वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। तो अगर तू किसी थोड़ी सी दूर जाके जगह में बैठ जा, सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह कर, हत्ता कि ये खबर फैल जाए कि जी तू अल्लाह अल्लाह ही करता रहता है सारा वक्त, तो मेरे वालिद की नजर में तू अल्लाह वाला होगा। मोहब्बत में इतना गिरफ्तार था कि वाकई महल छोड़कर और करीब ही कोई एक जगह, छोटी सी कमरा, छोटा सी कुटिया ले ली और उसमें बैठ के सुबह से शाम तक अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु लगा हुआ है। कुछ दिन गुजरे तो करीब की बस्ती में मशहूर हो गया कि एक अल्लाह वाले आए हुए हैं जिनका कोई और काम नहीं सिवाय अल्लाह को याद करना। तो लोगों ने आके तो दुआएं करवाना शुरू कर दी कि जी हमारे ये मसला है तो ये दुआ कर दें, ये मसला है तो ये दुआ कर। मशहूर होना शुरू हो गया कि जी अल्लाह वाले। हत्ता के बादशाह के एक वजीर को पता चला कि जी ऐसे अल्लाह वाले हैं, कोई और काम नहीं करते, सुबह से शाम तक अल्लाह को याद करते हैं। वजीर भी बादशाह के मिजाज से वाकिफ था, उसने बादशाह को अर्ज कर दिया कि बादशाह हमारे बादशाह सलामत, हमारे मुल्क में ऐसे अल्लाह वाले जिनका कोई और काम नहीं सिवाय अल्लाह को याद करने। बादशाह इतना खुश हुआ, उसने कहा हमारे मुल्क में ऐसे अल्लाह वाले कि जिनका कोई और काम नहीं सिवाय अल्लाह को याद करने के, उनसे तो मिलने के लिए मैं खुद हाजिर हूंगा। बादशाह सलामत अपने महल से निकल के उसकी कुटिया में पहुंच गए, देखा तो मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की याद में मशगूल। बादशाह और हैरान हुआ कि ये तो वाकई अल्लाह वाले, कि मैं बादशाह इसकी कुटिया में आया हूं, मेरे आने के बावजूद भी ये अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। कि मैं तो वो, बादशाह ने सोचा कि मैं वो, कि मैं जहां चले जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, प्रोटोकॉल होता है, ये वाकई अल्लाह वाला है कि मैं इसके कमरे में आ गया इसके बावजूद भी ये अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। तो बादशाह बड़े अदब से उसके बराबर में बैठा रहा, बहुत ही अदब से उसके साथ वक्त गुजारा, फिर उससे इजाजत लेके कि जी आप इजाजत दें तो मैं वापस अपने महल में चले जाऊं। तो उसकी इजाजत लेके और बड़ी खुशी के साथ बादशाह जो है वापस अपने महल में आया, दुआएं करवाई कि जी ये मसाइल है, उसके लिए दुआ भी कर दे। महल में जब आया शाम को, जब खाने लगा और बादशाह की पूरी फैमिली बैठी खाने पे, तो बादशाह ने बताया कि आज बड़ा खुश हूं कि हमारे मुल्क में एक ऐसे अल्लाह वाले हैं जिनका कोई और काम नहीं सिवाय अल्लाह को याद कर। बेटी ने जब ये बात सुनी तो बेटी ने कहा कि अब मेरा काम हो गया है कि मेरा वालिद जो है उसका मोतकिद हो गया है जो मुझे पसंद है। बेटी ने फौरन कहा कि अब्बा हुजूर इस अल्लाह वाले से तो मैंने भी मिलना है, बड़ी दुआएं करवानी है इससे। बादशाह ने कहा बेटी जरूर जा उसके पास और जरूर उनसे दुआएं करवा और मेरे लिए भी दुआएं करवा, बड़े अल्लाह वाले। अगले दिन बेटी बड़ी खुशी खुशी बन ठन के तैयार हो के उसकी कुटिया में पहुंची कि जी अब तो इजाजत से जा रही। तो जब उसकी कुटिया में पहुंची तो अंदर उसी तरह मुसल्ले पे बैठ के अल्लाहु 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 लगावत। तो अंदर आके उसने कहा कि जी अब बस बस कर, इस मकसद के लिए तू ये कर रहा था अल्लाहू, मकसद हासिल हो गया, मैं आ गई हूं। उसने देखा कि वो रुक नहीं रहा है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। शहजादी ने सोचा कि शायद भूल गया है, मैं उसको याद करवाऊं, थोड़ा वक्त तो गुजर गया है, पर याद करवाया कि अल्लाह के बंदे, ये मेरा आइडिया था कि तू इस तरह अल्लाहू अल्लाहू कर ताकि फिर तेरी मेरी मुलाकात हो जाए, तो मैं आ गई हूं। वो फिर भी लगा हुआ है, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। थोड़ी देर इंतजार करती रही कि पता नहीं क्या है ये, आखिर कोई शहजादी थी, उससे मैं आ गई कि तूने मेरे से मुलाकात नहीं करनी, इतनी मुश्किलों से इतना प्लान बनाने के बाद आज ये दिन आया है। उसने आगे से जवाब दिया कि जिस अल्लाह को याद कर रहा हूं, उससे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि तेरी तरफ देखने को भी दिल नहीं, चली जा तेरे से मुलाकात नहीं। जिस अल्लाह को याद कर रहा हूं उसकी नाफरमानी करने को दिल नहीं होता। अल्लाह, तो जिक्र की ये बरकत है कि जिक्र करने वाले को अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है। तो हर जमाने में जिन लोगों ने अल्लाह को याद किया उन्होंने अल्लाह को पाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर्राहिमीन, बड़ी रहमत। इंसान जो अल्लाह को याद करता है उसको राय गाने जाने देते हैं, तो जिसने थोड़ी भी हिम्मत कर ली अल्लाह ताला उसको अपने करीब कर लेते हैं। इसलिए ये हिम्मत करने वाली चीज है, इसमें गफलत न करें। जो मामूलात मशायख ने जिक्र के बताए हैं उनको पाबंदी से करें, उनको अपनी जिंदगी का सबसे अहम मकसद बनाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। आखिर दावान अलहम्दुलिल्लाह, दुआ कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलात वस्सलाम अला सैयदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
तो हजरत जी हमारे मौलाना हजरत, सलाम अलैकुम, कैसे हैं
रहमत
हजरत जी?
अल्लाह
हमारे
जी,
मौलाना खालिद, मौलाना खालिद साहब है, मुफ्ती सलीम साहब के हम सबक साथी हैं। ये
अच्छा
आज
माशा
हमारे यहाँ इम्तिहान हुए, हमारे बच्चों के सालाना इम्तिहान है, हिफ्स के बच्चों के, तो आज इनको मुमतहिन बनाया है हमने।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह जी, बहुत ही खुशी हुई आपको देख के मौलाना, अल्लाह ताला आपके इस आने को कबूल
ये तो
फरमा।
हमारे लिए सआदत है, बस मैं तो यहाँ आया था रहने के, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला ने आपका दीदार नसीब फरमा दिया, माशाल्लाह।
अल्लाह
मुफ्ती
खैर,
आपकी अल्लाह, ईमान ताज़ा हुआ। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी मेहनतें कबूल फरमाए,
आमीन
अल्लाह
रब
ताला
से।
से रखे आप
मैं
तमाम। जी जी
एक करना चाह रहा था आज,
जी
खास मौलाना अब्दुल अजीज साहब और जितने मदारिस और मसाजिद के हमारे यहाँ दार हैं, हमारी खत्म बुखारी की तकरीब अगले जुमा को है, यानी आज जुमा है और नेक्स्ट फ्राइडे को है, उसके फ्लायर्स वगैरह अवेलेबल है, वो अपने अपने मदारिस में मसाजिद में लगाएं और लोगों को ऐलान करें। मौलाना अब्दुल अहद साहब सक्कर वाले भी यहाँ पे माशाल्लाह शिफ फरमा है। इस तरह मुख्त मदार इंस्टीट्यूशंस के अहदेदार
जी जरूर इंशाल्लाह। जी,
तो ये फ्लाग और अपने अपने जगहों पे उसको नसब भी करें इंशाल्लाह, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठाएं। हमारी
इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
की मजलिस है वो ऐसी है कि ऐसे हजरात उसमें अल्लाह ताला भेज देते हैं कि जिनके चेहरों को देखना भी इबादत है, तो हमें चाहिए कि दें कि वो भी इस बरकत वाली तकरीब में जरूर शामिल हो इंशाल्लाह। जजाकुम अल्लाह। वालेकुम वरह।
وعليكم السلام ورحمة
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقرأ عندي.